under the guidance of our beloved Gurudev. We have been hearing the topics of Sri Ramananda Roy Samrad. So fortunate to hear from the lotus mouth of a realized Rasik Vaishnava who has understood the final lessons in these teachings of Rai Ramananda Samvad. And we are hearing the step-by-step approach which Srila Ramananda Roy was explaining, and how Sri Chaitanya Mahaprabhu is drawing the essence and encouraging that the subject matter should become more and more focused, more and more in tune with the pure transcendental nature of the soul in his relationship, eternal relationship with Krishna. So, in the course of this discussion, Sri Ramananda Roy has now quoted a verse in which Chaitanya Mahaprabhu was satisfied that now the subject matter has become relevant to the pure nature of bhakti. This was the subject matter we were hearing yesterday, in which he quoted the verse spoken by Lord Brahma in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, the Brahma Stuti. There he is telling, Jnane prayasa mudapasya namanta eva jivanti sanmukaritam bhavadiyo vartam stane stita shrutigatam tanuvan manobir ye prayaso jita ajitopyasi taistri lokyam. So jnane prayasam, this attempt to understand the Supreme Lord simply by the process of the intelligence, to try to stretch our intelligence to the limits of understanding the absolute nature of the Lord, his transcendental opulences, and to try to comprehend how the Supreme Lord is the Supreme Adhoksaja in the transcendental region. It is not possible for a limited living entity, for a jiva soul, to go to the limits of the unlimited infinite. This is not possible. But yet, in the preliminary stages, it is suggested, yes, through the attempts of mixing karma with bhakti and mixing jnana with bhakti, some progress can be made on those stages. But when one wants to come to the level of pure bhakti, shuddha bhakti, anya vilashita shunyam bhakti, then this begins at jnane prayasa. Giving up this attempt, udapasya namanta eva, and simply surrendering. Jivanti san mukaritam bhavadiya varitam, and accepting, adapting the most favorable process. Jivanti sanmukaritam, living in the association of the Mahat, the great personalities from whose lotus mouths a transcendental rivers of nectar are flowing, of Harikatha. And in this association, stane stita shrutigatan tanuvan manobir, completely devoting one's body, mind, words under their guidance and remaining in that association, remaining in one's position in life, but adapting this favorable process of hearing. And through this process, ye prayaso ajita jitopi asi taistri lokyam, the Supreme Personality of Godhead, who is ajita, he cannot be conquered, he cannot be controlled, he is the Supreme Controller. Ishvara Parama Krishna, Sachidananda Vikraha, Anadi Radir Govinda Sarva Karana Karanam, he is controlling all controllers. So how is it possible to control him? Ajita, unconquerable. But Lord Brahma Ji is telling that by this process, oh, then he becomes Jita. He becomes conquered by the devotee. So in a very beautiful way, this discussion has led to this particular level in which the process that is most relevant for the soul, he does not need to endeavor. There is no necessity to separately try to acquire Brahma-gyan, try to become Brahma-bhuta-prasanatma, as we heard, to mix gyan with bhakti, to try to realize the transcendental nature of the soul. But through the process of pure hearing from the self-realized, the lips of the self-realized soul, that automatically within the heart, all this knowledge, all this realization, it will be inculcated within the heart automatically. So there is the process that Chaitanya Mahaprabhu was satisfied. Yes, now this is good, what you are speaking. Now develop this point further. And as we will hear, Srila Ramananda Roy, now he will go into the discussion of pure bhakti and developing in the transcendental line of relationship with Krishna, coming into Dasya Bhav, Sakya Bhav, Vatsalya Bhav, and ultimately into Madhurya Bhav. So from this point now, there is the possibility of actually cultivating the pure relationship with Krishna, with no mixture of anything else. No karma, no jnana. Jnana karma anavrita. Not covered at all by any other extraneous endeavors and desires. And only anukulyena Krishna nushilana. Now only the positive, favorable cultivation of activities which are purely meant for the satisfaction of Krishna with one's body, mind, words, and also one's emotions. Now this process has been suggested by Ramananda Roy. So we will hear from Srila Gurudev this evening how Srila Ramananda Roy is going to suggest develop one's relationship with Krishna in different transcendental rasas. And this is the most auspicious opportunity to hear in the transcendental Dham, Sri Jagannath Puri Dham, in the assembly of the Vaishnavas, and under the guidance of a pure devotee of Krishna, Rasik Vaishnava. Now we will hear these transcendental topics by the mercy of Sri Guru and Sri Gauranga.
Mirandhasya Jnanan Jana Salakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Vancha Kalpataru Bhyasya Kripa Sindhu Bhyayvacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namo Mahabhadanaya Krishna Prema Pradayate Krishna Hare Krishna Chaitanya Namne Gaurakshi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tarade Krishna Hare Krishna Bhaktaya Tarabhaktaya Yang prabhrajantamanupetamapetakrityam dvaipayano irahatarayajula putre pitanmaitaya sarvohi tam sarvohoktaridayam tavai vasmi najivam tvayami iti bhignayaradhi tangnaimam charam. मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद सदस्य अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन कर तत्पश्चात अपने शिक्षा को नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पास में भक्ति दल माधव स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में सष्टांग हम लोग जैसा कि राय रामानंद संवाद में क्रमशः सुन रहे हैं वर्णाश्रम धर्म से लेकर वैष्णव वर्णाश्रम धर्म त्याग कर्म मिश्रा भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति इहो बाज्य इसके बाद में ज्ञान शून्य भक्ति के संबंध में बतलाया। महाप्रभु जी ने इहो है आगे कहा आर फिर आगे कहा। इस तरह से धीरे धीरे ले चल रहे हैं। जब कहते कहते ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार कहा तो महाप्रभु जी ने यहां कहा इहो है आगे कहा। क्यों कहा? इसमें जीव के स्वरूपानुबंधी सेव्य सेवक का भाव है, यहीं से आरंभ होता है, किंतु वहीं तक समाप्त नहीं हो जाता। ये अभी प्रारंभ हुआ और जहां सेव्य सेवक का भाव है सेवा की वासना का भी इंगित पाया जाता है। इससे पूर्व में ब्रह्म और जीव का ऐक्य ज्ञान का गंध था, इसलिए यह बाज्य कहा। और जहां पर भक्ति के अनुकूल वासना के अनुकूल सेवा की का इंगित है वहां पर उन्होंने कहा इहो है। यह मैंने प्रारंभ किया है। आगे कहा आर इसका मतलब यही अभी तो आरंभ हुआ है। यहां से क्या आरंभ हुआ? भक्ति के अनुकूल संबंध ज्ञान नित्य सेवक और सेव्य का भाव और उसकी सेवा की वासना यहां से भी आरंभ हुआ। विशेष करके अभी कल हम लोगों ने अनुशीलन किया बतलाया शून्य भक्ति से ज्ञान कर्म आदि शून्य भक्ति से भगवान वशीभूत हो जाते हैं। ज्ञाने प्रयास उपास नमंत एव जीवंत संकरिता भवदीय स्थाने स्थिता अनुमान मनोभी प्रायो अजित जीतो अजित भगवान। किंतु हरि कथाओं कथाएं उनको मंत्र मुक्त कर देती हैं वशीभूत कर देती हैं, इसलिए उनको भी जीता जा सकता है वशीभूत किया जा सकता है। किंतु इसमें एक चीज साफ नहीं हुआ क्लियर नहीं हुआ। क्या क्या भगवान की कथा सुनने मात्र से ही भगवान वशीभूत हो जाते हैं? क्या भगवान की कथा सुन रहे हैं और वशीभूत हो गए हैं? और क्या सब जगह संभाव से वशीभूत होते हैं? ऐसा नहीं। हरि कथा सुनते 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 जब चित्त निर्मल हो जाता है और अपराध की तो बात ही क्या, समस्त अनर्थ दूर हो जाते हैं, चित्त निर्मल हो और प्रशांत हो जाता है, तब उसमें कृष्ण सेवा की वासना श्रद्धा उत्पन्न होती है और फिर निष्ठा भजन क्रिया के द्वारा गुरु पदा से और फिर निष्ठा और निष्ठा से क्रमशः रुचि आसक्ति, आसक्ति में ममता कुछ जोड़ती है। इसलिए तत्फनात कहने का तात्पर्य यही है कि ये प्रक्रिया में वो आ जाता है और अधिक विलंब नहीं होता है। और दूसरी बात, वश्यता की भी वैचित्री है, तारतम्य है। जितना ही प्रेम होगा उतना ही ममता आएगी, ममता जितना होगी प्रेम भी उतना होगा, बिना ममता के प्रेम नहीं होता, प्रेम होगा ममता, और जहां ममता नहीं है भक्ति भी रति भी पांच प्रकार की मानी गई, शांत दास सख्य बात्सल्य मधु, पांच प्रकार। इसमें ये देखो शांत वैकुंठीय रति है, इसमें ममता नहीं है, निष्ठा है। निष्ठा है, कैसी निष्ठा है? कृष्ण को छोड़ करके और कहीं भी उसकी निष्ठा नहीं है, बस कृष्ण में एकमात्र उसकी निष्ठा है। उसमें ममता नहीं है, प्रेम किसको कहते हैं? उदाहरण के लिए समझो, पानी बिना मछली और जल बिना चातक नहीं रहेंगे, छटपट करके प्राण छोड़ देंगे। मछली को बाहर रखो, न प्रेम गंधोस्ति तरापि मे हरऊ सौभाग्य भारम प्रकाशितुम बंसी बिलास्य आनंद अवलोकनम बिना विभर्तम जत प्राण पतंग कान वृथा। ये भाव आएगा, प्रेम कहाँ है? ये कौन कह रहा है, महाप्रभु कह रहे हैं या राधा जी कह रहे हैं? प्रेम कहाँ? ये तो मछली जैसे तड़पते हुए मर जाती, चातक और पानी बरसे, नदी नाले के पानी है, नदियों का समुद्र का पानी है, नहीं पिएगा, स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएगा, चाहे प्राण निकल जाए। इसी तरह से शांत रस वाले जो हैं उनकी निष्ठा है कृष्ण के प्रति, कृष्ण को छोड़कर के और कहीं नहीं उनकी निष्ठा है, इसलिए उनको भी मान लिया गया एक भक्ति रस। क्यों माना गया? है तो शांत, शांत मम बुद्धि निष्ठिता न क्या है, कृष्णई कनिष्ठता। शांतरस स्वरूप बुद्धे कृष्ण कृष्णई कनिष्ठता समोनिष्ठता बुद्धे इति श्री मुख गाथा। कृष्ण गीत बिना तृष्णा त्याग तारकाज्यमानी, अतएव शांत कृष्ण भक्ति जानी। शांत माने क्या? ममता भी निष्ठा है कृष्ण में, तो अभी इसको मान लिया क्यों? एक रस वो कृष्ण में निष्ठा होने की वजह से। शांत रस का उदाहरण समझो, जैसे गाय है, गाय कृष्ण के सामने खड़ी हो जाएगी या कृष्ण चले जाएंगे गैया के पास और उसके स्तन के नीचे मुख कर देंगे और वो ऊपर से दूध चुचुआ रहा है, ये शांत। वृक्ष है, वृक्ष में के नीचे कृष्ण जाएंगे तो छाया और हो सकता है कि फल भी गिर जाए, डाली झुक जाए, किंतु कृष्ण जाए नहीं, वहां नहीं ये लोग जा सकते, स्वतंत्रता नहीं है इनकी, इसलिए ये शांत रस के उदाहरण हैं। किंतु ब्रज का शांत ऐसा नहीं है, एक तो ब्रज में शांत ऐसा है नहीं, वहां की गायें वत्सल रस वाली, बछड़े सख रस वाले, वृक्ष सख रस और लताएं वो मधुर रस वाली, विशेष यह है। तो कहते हैं शांति ममता बुद्धि नहीं है, ममता बुद्धि नहीं, ममता से सेवा की वासना होती। अब इसको और भी समझो, सनत सनंदन सनत कुमार ये शांत रस में है, कृष्ण में इनकी, इन कृष्ण से इनका क्या संबंध है? सखा है कि क्या है? ये कुछ भी ममता नहीं है, और ममता नहीं है तो संबंध का क्या विकास भी नहीं है। इसलिए सनक सनंदन इतने ऊंचे होते हुए भी उनको शांत रस में रखा। सुखदेव गोस्वामी को भी पहले, व्यास जी से पहले उनको शांत रस में रखा गया, पीछे व्यास जी की कृपा से आत्मा रमस्य मुनियो निर्ग्रंथा पे उपक्रम कुरवंत है कृपम भक्त भूत, तब इस रस में आए। जब ममता आ गई तब तो वो पड़ गया। बैकुंठ में ऐश्वर्य ज्ञान युक्त दास्य प्रेम है, किंतु यहां का दास्य भाव बैकुंठ का संकुचित है, विकसित नहीं है। अब चलो वहां ब्रज में, वहां पर नंद बाबा के जो सेवक हैं कृष्ण को गोदी में लेकर के बेटा बेटा कह करके खिलाते हैं, अपने कंधे पर ले चलते हैं और कृष्ण से खेलते हैं। यहां का दास्य रस और बैकुंठ का दास्य रस में बहुत अंतर है। बैकुंठ वाले सेवा नहीं कर सकते, उनकी ममता नहीं है। नंद बाबा के सेवक में कृष्ण के प्रति ममता है, इसलिए सेवा का विकास है। और भी देखो, द्वारका और मथुरा में भी दास्य प्रेम है। सांब इत्यादि जो उनके पुत्र हैं वो भी सेवक हैं, दास ही। ब्रह्मादि आधिकारिक देवता हैं और उद्धव इत्यादि भी एक तरह से दास्य है, ये दास हैं वहां। परंतु उस ज्ञान में, उस प्रेम में कुछ ऐश्वर्य ज्ञान का गंध मिला हुआ है। किंतु ब्रजवाले में नहीं, तो इस तरह से ब्रज प्रेम में ऐश्वर्य नहीं है कि माधुर्य द्वारा ढका हुआ है, अच्छा दिख है। इसलिए ब्रज का प्रेम, वहां के सखा लोग, वहां के माता पिता, वहां की गोपियां, उनका प्रेम ही कुछ अद्वितीय है, ममता युक्त, अधिकाधिक ममता चला रहा है। ममता के ऊपर में तारतम्य से उनका प्रेम का भी वैचित्र्य और तारतम्य है। यू कैन एक्सप्लेन।
Srila Gurudev, summarizing the previous day's katha, explained how in the discussion between Sri Roy Ramananda and Sri Chaitanya Mahaprabhu, Roy Ramananda has suggested Varnashram Dharma, Karma Mishra Bhakti, giving up Varnashram Dharma, Jnana Mishra Bhakti, Bhakti mixed with knowledge. And up until that point, Sri Chaitanya Mahaprabhu replied to every suggestion of Roy Ramananda with words, Eho Bhajya. This is external. Tell me something more. So, Roy Ramananda suggested Jnana Shunya Bhakti, devotional service which is completely devoid of jnana. When Mahaprabhu heard this, he said, Eho Hai. This is all right. This is acceptable. But tell me about something superior. So slowly, slowly, they are progressing in their discussion through gradually increasing levels of conception of devotional service. So the question comes, why is it that Sri Chaitanya Mahaprabhu has accepted this suggestion of Jnana Shunya Bhakti? It was the first thing that he accepted and said, Eho Hai. Why? Because in this suggestion, the Sevya Sevaka Bhav, the mood of master and servant, or rendering service by one individual to the object of his service, is there. And the conception, which is Sarup Anubandhi, related to the constitution of the living entity, is there. And there is some Seva Vasana, desire, but only a hint. This is only hinted at. In other words, the beginning stage of devotional service. So, in summary, we can say that wherever there is Aikya Gyan, knowledge of oneness, this is definitely an external conception. But where there is a hint of devotional service and the constitution of the living entity, this is acceptable. So this is the beginning of the discussion of bhakti. This has been accepted because this suggestion is bhakti anukul, favorable for devotional service. It contains some sambandha jnana. So by this jnana shunya bhakti, devotion which is devoid of knowledge, Bhagavan becomes controlled. Right, Ramananda suggested the verse jnane prasa muda pasena manta eva. At the end of the verse it says, ye prayaso dita ditopya sitais tilokyam, which means that the Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, is ajita, unconquerable. He cannot be controlled by anyone. But by Harikata, he becomes mugda. He forgets everything and he becomes controlled. Just as by the influence of a mantra, one type of invocation. A person can be brought under control of the person who is chanting the mantra. So similarly, by hearing and speaking Hari Katha, Bhagavan becomes mugda, forgets everything and comes under the control of that devotee. So even though this point has been suggested and established by this verse spoken by Lord Brahma, still there is one topic which is not clear from this verse. What is that? Is it that if someone sits down and they listen to Hari Katha, at once, there and then, Bhagavan becomes under their control? Is it correct? Or will it take some time? Or are other factors involved? So, by hearing Hari Katha, the chitta, one's consciousness, it becomes purified from the modes of material nature and peaceful, satisfied. So when anarthas are cleared, almost all cleared, then the very strong Krishna Seva Vasana, strong desire to render a particular type of service to Sri Krishna, awakens. In other words, first the living entity will have to do Guru Pad Ashray. They'll have to take shelter of the lotus feet of a bona fide guru. They have to render service, Bhajana Kriya. And gradually their unwanted desires and misconceptions will be cleared, and nishtha will come, steadiness. And then ruchi, taste, and then asakti, attachment. In this stage of attachment, a very slight awakening of genuine mamata, or possessiveness, for one's ishtadev will awaken. This is very important, because without mamata, then there's no love. Bhakti is of five types: Shanta, Dasa, Sakya, Vatsalya, and Madhurya. Neutral mood, service mood, friends mood, parents mood, and lovers mood. So these are, one after the other, increasingly condensed, superior in terms of devotion. Why? Because the mamata, the possessiveness in each one, is higher than the previous one. So Shanta, this mood, the service in Shantaras, is the rati of Vaikuntha. Here there is nishtha. That means that the mind is attentive to Krishna. But there's no mamata here, possessiveness. This nishtha, Krishna nishtha, is attention to Krishna, being fixed in mind upon Krishna, and not being attracted by anything else. So Sri Chaitanya Mahaprabhu explained to Srila Rupa Goswami the two qualities of this Shantarati. One is Krishnaika Nishtata, to be attentive only to Krishna. And the other symptom is Trishna Tyag, to completely renounce the thirst for anything other than Krishna. Trishna Tyag. So what is praying? Srila Gurudev gave two examples of praying. A fish, just as a fish has attachment for water, or the chatak bird has attachment to the rain that falls at the time of Swati Nakshatra. And neither of them can live without the object of their attachment. So similarly, if there is praying, one cannot stay alive without the service of the object of one's love. So Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, being absorbed in the mood of Srimati Radhika, he said, Na prema gandosti gurapa meharo, krandani so bhagya param prakashitam, bangsi balasana nalokanam vina, vibhami yat prana patangatam britha. Oh, Radhika says, I have no prema. I don't even have a smell, slight scent of love. Then why are you crying? Kandami so bhagya param prakashita. Only I'm making a show of my good fortune. But really I have no love. Why? Because bangsi balasana alokanam vina. Because without seeing the beautiful smiling face of Krishna, holding the flute to his lips, I still maintain my life in this world, completely worthless, without any meaning, like an insect passing his life. So, praying has attachment like this. Now, when we discuss Shantarati, some examples have been given. A cow is standing in the presence of Krishna, and Krishna approaches that cow, and the cow begins to, from the udders, give milk in the mouth of Sri Krishna. Another example of Shantamud, a tree. A tree is standing, and when Krishna comes, the tree bows down, offers fruits and flowers and shade to Sri Krishna. So these examples have been given of Shantamud. But actually, in Braja, there's no pure Shantamud, actually. Because if Mamata is there, then Seva Basana comes. And we see that all the apparently moving and non-moving living entities of Braj, they all render service to Krishna. The cows, they're in Vatsalya Bhav. They have a parental mood to Krishna. The calves, they have Sakya mood, friendship towards Krishna. And the trees also, they have a mood of friendship to Krishna. And the creepers that embrace the tamal trees of Vrindavan, they have Madhurya mood towards Krishna. So when there's Mamata, possessiveness, then in the wake of that possessiveness, Seva Basana, service tendency comes, the desire to render service. So, question comes, the four Kumars, what relationship do they have with Sri Krishna? They have Shantarati, so they don't have Mamata, and therefore, because of the absence of Mamata, then the Sambandha relationship does not flourish and develop. So even though they are very, very elevated, yet still they are in Shantarasa. Shukadeva Goswami also, in his first career, he was situated in Shantarati, but by the mercy of Vyasadeva, he became elevated to a higher stage, as described by the verse of Suta Goswami, his disciple. Akmaramas chamuneo negranta apyurukare kravanta hoitikim bhaktim itam bhuta ganohari. So, in Vaikuntha, the Dasya mood, which is present there, we have discussed Shantarasa related to Vaikuntha. Now, Dasya Rati in Vaikuntha, that Dasya Rati is Aishwarya Gyan Yukta, or completely mixed with Aishwarya Gyan. And therefore, this mood of, though there is a mood of service, it is somewhat restricted, somewhat contracted, and it cannot flourish. So we see that in Vrindavan, there is also Dasya mood, servant's mood. But Krishna is a child, so he has no servants. They are the servants of Nanda Maharaj, the chief of Braj. So those who are the servants, the Das of Nanda Maharaj, their mood towards Krishna is mixed with other moods, such as friendship and parental love. They'll take Krishna in their lap, and they'll call him, "Oh my son, oh my son." And they'll play with him in so many ways. So if we can compare the Dasya Bhav of Vrindavan with the Dasya mood of Vaikuntha, we'll see there's a very vast difference between the two.
Thank you.
उच्चतम उदाहरण है। प्रथम तो इसमें मधुर स्नेह और वो मधुर स्नेह से कृष्ण के प्रति कैसा ममता का भाव। आज कृष्ण अभिसार के समय में विलंब करके पूछाएंगे, रात बीत चुकी है, निशांत के समय में आए। राधा जी ने जान लिया कि कहां से आ रहे हैं, के शव जाही जाही जाओ जाओ, उस प्रेयसी के यहां से जहां से आए हैं वहां जाओ, उसके केशों का संस्कार करो, ले जल्दी जाओ, नहीं तो देवी रुष्ट हो जाएंगी, उसे मनाओ। कृष्ण जाही जाही मां बद कही, तो झूठ मत बोलो। उन्होंने कहा जी मैं तो यहीं से आ रहा हूं, देरी विलंब हो गई, झूठ मत बोलो, हमको प्रताड़ना मत करो। कितना ममता का गंध है, ऐसी ममता का गंध है कि कोई सखी ने कहा यदि ये तुमको छोड़ सकता है तो तुम भी इसे छोड़ दो, यही नहीं होता। वो जैसा तैसा है, लंपट है, धूत है, जो कुछ भी है, चाहे असली स्वा पाद रतांग तिनष्ट मांग अदर्शनांग मर्म हतांग करो दुआ जथा तथा मत धातु पद धातु लम पटो सप्राण वही हमारा प्राणनाथ है। चाहे हमें हमारे सामने विपक्षी स्त्रियों के पास में बैठे गोपियों के, चाहे हमको पद दलित कर दे, चाहे सबको छोड़ करके हमारे पास आए, वो हमारा प्राणनाथ है, छोड़ नहीं सकते। इसका इस पद में एक गंभीर भाव है। अब आप लोग चलिए, राय रामानंद जी ने बतलाया पहले ज्ञान शून्य भक्ति, महाप्रभु ने कहा हाँ ये ठीक है, आगे कहिए। राय कहे प्रेमा भक्ति, प्रेम भक्ति सर्वसाध्य साध, प्रेम के लिए बतलाया ना, प्रेम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है ममता को लिए हुए, जहां पर मछली बिना पानी के छटपट करते हुए प्राण छोड़ देती है, और स्वाति नक्षत्र का जल चातक उसके सिवा और कोई पानी नहीं पीता है, नदी नाले नदियां सब भरी पड़ी हैं, सरोवर भरा पड़ा है, पानी नहीं पिएगा, पिए कहां, स्वाति नक्षत्र का पानी आया तो उसे पिए। ऐसे कृष्ण के प्रति उनका अनुराग हो, इसलिए प्रेमा भक्ति सार कहा, और उसमें उदाहरण दिया दो, इसके संबंध में आगे हम बतलाएंगे। नानोपचार कृत पूजनम आर्त बंधो प्रेम नैव भक्त हृदय सुख विद्युतम स्यात् जावत छुदंती जठरे जरठा पिपासा तावत सुखाय भवतो ननु भक्ष्यते। जिस प्रकार से नाना उपचार के द्वारा ठाकुर जी की पूजा की जाती है, तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं, तरह तरह के उपकरणों के द्वारा प्रभु की सेवा की जाती है, हे आर्त बंधो प्रेम नैव भक्त हृदयम सुख विद्युतम स्यात्। प्रेम यदि है उस उपचार में और प्रेम रस से सिक्त वो उपचार है, भोग है अथवा और चीजें हैं, तब तो भगवान का हृदय विगलित हो जाता है, आपका हृदय विगलित हो जाता है। जिस प्रकार से यदि प्रबल भूख हो और प्यास हो, प्रबल जरठा पिपासा खुदंती हो, भूख हो और प्यास हो, तावत सुखाय भवतो ननु भक्ष्यते, तब उसको कोई कुछ भी दे दे वो खा लेता है, और भूख और प्यास नहीं है तो खाएगा नहीं, केवल इधर उधर करके छोड़ देगा। तात्पर्य क्या है, करें हैं प्रेम हो, कोई उपचार हो और न हो, प्रेम केवल हो, तो उस प्रेम से भगवान का चित्त द्रवित हो जाता है और उसके वशीभूत हो सकते हैं। और प्रेम नहीं है तो उसमें वस्तुओं में कुछ सुख नहीं, चाहे वो महान भोग हो, खीर हो, राबड़ी हो, रसगुल्ला हो, कुछ भी हो, उस वस्तु में रस नहीं है। रस कहाँ है? यदि भूख और प्यास प्रबल है तो। यहां पर एक दृष्टांत और दृष्टांत है, उदाहरण दिया गया। नानोपचार्थित पूजनम अर्थबंध, नाना प्रकार के उपचार हैं। उपचार में समझते हैं व्हाट सामग्री प्रिपरेशंस, नाना प्रकार के हैं। हे अर्थबंध, आपका जो पूजन होता है, प्रेम यदि है तुम्हारे पूजा में, तुम्हारे अंदर में, साधक के हृदय में यदि प्रेम है तो तब प्रभु का हृदय सुख से विद्रुत हो जाता है, द्रवित हो जाता है और इस चीज को ग्रहण करते हैं। और यदि खुदाई नहीं है, प्यास नहीं है, तो उसे वो, यहां पर एक दृष्टांत दिया गया, वो ठीक ऐसे मालूम होता है जो लगता नहीं।
सेवा करता है, आदर नहीं है। सेवा करता है, कोई आदर नहीं है।
भक्त के हृदय में प्रेम है तो भगवान को यहां पर सुख होता है। एक परवेशन करने वाला व्यक्ति है, राबड़ी मान भोग खीर पूड़ी चावल दाल जगन्नाथ जी का परवेशन कर रहा है, तो भक्त के हृदय में यदि प्रेम है, जो परवेशक है उससे भगवान का क्या तात्पर्य, जो भोजन कर रहा है उसको क्या तात्पर्य है? आया समझ में? अंडरस्टैंड। यदि एक व्यक्ति है परवेशन कर रहा है, खूब अच्छी अच्छी चीज, महान भोग खीर राबड़ी मलाई मालपुआ, यदि इसको प्रेम है परवेशन करने वाले, तो उसे जिसको खिलाता है उसे क्या तात्पर्य? कुछ भी नहीं है। इसलिए मालूम पड़ता है जैसे यहां पर दृष्टांत कुछ ठीक से नहीं दिया गया, किंतु ठीक है। कैसे ठीक है? यशोदा मैया कोई चीज को बनाया, उनके हृदय में प्रेम है, अरे जी ये कृष्ण को खिलाऊंगी, और कृष्ण अंतर्जामी है, जान गए, और यशोदा जी को खिलाने की इच्छा है बड़े प्रेम से, इसलिए कृष्ण को भूख लग गई, कहे मैया मक्खन दो। आ रहा है समझ में कि नहीं आया? अंडरस्टैंड नाउ। भक्त के हृदय में यदि प्रेम है तो प्रेम को देकर के कृष्ण को सेवा ग्रहण करने की अभिलाषा जग उठती है। ये विदुर जी की विदुरानी, दुर्योधन के घर में मेवा त्याग दिया, सोने का राजभवन पर त्याग कर दिया, और मेवा का भोग लगाए वो उसको भी छोड़ दिया, और विदुरानी के घर में भूख लग गई। क्यों लग गई?
उसके हृदय में प्रेम है। इसलिए बोले जैसे मैया भूख लगी है, उनके यहां भूख लग गई और घर में कुछ नहीं है, केवल केला है, और प्रेम से मत हो करके गिरी को फेंकने लगी और केले के छिलके खिलाने लगी, और कृष्ण बड़े आनंद में विभोर होकर कृष्ण जब विदुर तो घर में नहीं थे आए, अरे ये छिलका खिला रहे, चुप रहो चुप रहो। आज मुझे द्वारकावास की रुक्मिणी सत्यभामा जो मुझे इतना स्वादिष्ट भोग लगाती है उसमें रस नहीं जितना आज हमको केले के छिलके में रस मिलता है। कृष्ण को कोई पदार्थ की जरूरत है, कमी है, उनको किसी चीज की कमी है, उनको किसी भी भोग की किसी भी संपदा की कोई कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? प्रेम की। वो राधा जी वाला प्रेम, यशोदा जी वाला प्रेम, सखा वाला प्रेम काम ले, वो यदि प्रेम हो तो उनको झट भूख लग जाती, अपने सखाओं के मुख से निकाल करके खा लेते हैं, ये यदि प्रेम है। इसलिए कहते हैं खुदा पिपासा, यदि भक्तों के हृदय में प्रेम है तब तो है, अन्यथा नहीं। एक तो उदाहरण ये दिया प्रेमा भक्ति का, और दूसरा एक और दिया कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यमे कलम जन्म कोटि सुकृतिर् न लभ्यते। ये दूसरा उदाहरण दिया प्रेम का, प्रेम भक्ति बतलाए कल कर हुआ हो गया काबिल तुम्हारो आई विल एक्सप्लेन ओ यू शुड एक्सप्लेन व्हाट आई टोल्ड। इधर आरती का समय भी हो गया, 6:07 बजे। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं।
sense of this verse is that only praying controls Krishna, not the quality of the ingredients or the offering. It is only praying. It is that praying which gives happiness to Krishna. Krishna does not get happiness from the kheer and rubbery and so many opulent preparations. But rather, happiness comes from accepting an offering when you are hungry and thirsty. And this hunger and thirst comes from the praying of the devotee. So, Srila Gurudev, to make us understand this clearly, he said, it seems that there's a defect in this example. Because if they're very good preparations, and someone is distributing them, then you will eat them. What difference does it make whether the person who's distributing the preparations has love for you or not? It will not affect your appetite. Your appetite is not affected by whether the person who's distributing all the very nice preparations has love for you or not. This is a general case. But in Krishna's case, what happens? Actually, Bhagavan is Atmaram, he is self-satisfied. He has no hunger and thirst. But we see that in Vrindavan, Madhya Yashoda, she has such a strong seva vasana, strong desire to serve Krishna. She has an intense desire to feed him. And therefore, it is her intense desire to feed him that causes Krishna to feel very hungry, so he comes running to his mother, "Oh my, oh, I'm thirsty, I'm hungry, give me your breast." So, there's no defect in this example, but rather, this example, it applies to Krishna. This is Krishna's swabhav, his nature. So Srila Gurudev is giving an example that once Duryodhan invited Krishna to come to his palace to take a meal. So Duryodhan has a golden palace, he has so many preparations, very opulent preparations, but Krishna didn't go there. Where did he go? He went to the house of Vidura, and he approached Vidurani, the wife of Vidura, and said, "I'm hungry, please give me something." She looked and saw there was nothing in her house, only some bananas. So then, in the excitement of her praying, she peeled the bananas, and instead of throwing away the peel and giving Krishna the banana, she threw away the banana and gave Krishna the peel. So then Krishna, he took the peel, and he was eating the peel. Then when Vidura saw this, he wanted to say, "What are you doing?" But Krishna's checking, "Don't say anything. Don't say anything. Why? Because I stay in Dwarka, and they give me so many preparations there, but I've never tasted anything so flavorful as this banana skin. This is much more tasteful, flavorful than any preparations I've tasted in Dwarka." So, the conclusion is that if brain is present, then there cannot be any deficiency or anything lacking in the offering. Everything is